जब परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी, मैं चल पड़ी अब कोई भी रोको ना। मेरी सोच को जब परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी, अब रोको ना। मुझे हर विषय मंजूर नहीं, मुझे हर विषय मंजूर नहीं, मंजिल भी अब दूर नहीं। खुद क्षमा मैं जलाऊंगी इन राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा। खुद क्षमा मैं जलाऊंगी इन राहों पे,
ओम शांति। आज के रूहानी क्रांति का छठवां सूत्र है कि रूहानी मेकअप। तो रूहानी मेकअप ये 10.3.86 की अव्यक्त वाणी के आधारित है। तो अव्यक्त वाणी का हेडिंग है बेफिकर बादशाह बनने की युक्ति। तो बाबा ने बताया है कि बादशाह तो बहुत देखे हैं, लेकिन आप बेफिक्र बादशाह की सभा है। तो ये सभा कैसी विचित्र सभा है, क्योंकि इसमें सब बेफिक्र बादशाह बैठे हैं और किसको कोई फिक्र नहीं है। और सतयुग में ये देवी देवता ही है, और उनको फिक्र और फकूर इन दो शब्द के नॉलेज का, यानी नॉलेज का क्या पता नहीं रहता है उनको, यानी इमर्ज नहीं होता वहां पर नॉलेज। लेकिन दुनिया में बाबा ने देख बोला है कितनी फिक्र है लोगों को, कि सवेरे उठते ही उनको परिवार की फिक्र रहती है और कार्य व्यवहार में जो भी धंधा धोरी करते उसकी फिक्र रहती है और मित्र संबंधियों की फिक्र रहती है। लेकिन हाँ लेकिन ये ब्राह्मण बच्चे उनके कोई फिक्र नहीं है, बेफिक्र बादशाह है। क्यों बेफिक्र बादशाह है? क्योंकि हमने जो भी जिम्मेवारी है सब बाप को सौंप दी है, बाबा को जिम्मेवारी सौंप दी है, इसी कारण हम बेफिक्र हो गए। और हम चैन के साथ सोती है, नींद भी आराम की करती है, यानी सुख शांति की नींद करते। दुनिया वालों को देखो नींद भी नहीं आती, इतनी गोलियां खाती है सब कुछ करते, लेकिन उसको नींद नहीं है, उसकी उससे कोसों दूर नींद भाग गई है। लेकिन हम बच्चों को यानी आराम की नींद आती है। तो ये बाबा ने बताया है कि बाबा के बच्चों को दुनिया वाले लोगों को नींद नहीं आती, बच्चों को तो आती है नींद, ब्राह्मण बच्चों को नींद आती है। तो इसका कारण यही है कि हमने सब बाबा पर सौंप दी है जब जिम्मेवारी, इसके कारण हम बेफिक्र बादशाह बन गए। ये बाबा ने युक्ति बताई है बेफिक्र बादशाह बनने की। तो अभी हम देखेंगे रूहानी मेकअप। तो देखा जाए तो दो प्रकार के मेकअप है, एक रूहानी मेकअप यानी जो हम ब्राह्मण आत्माएं अपने आत्मा का श्रृंगार करती है, ये रूहानी मेकअप। एक जिस्मानी मेकअप है वो दुनिया वाले, जैसे दुनिया वाले शरीर का मेकअप करते हैं, उसमें जो भी पाउडर लगाना क्रीम लगाना और जो दुनिया के लोग करते हैं उस प्रकार का मेकअप। तो उनमें इस मेकअप में यानी वो भी दो प्रकार के मेकअप रहती है, एक जिस्मानी मेकअप जिसमें वो शरीर को देह का श्रृंगार करते हैं, उनको पता है कि देह विनाशी है और एक दिन वो मिट्टी में मिलने वाला ही है, लेकिन वो श्रृंगार करना छोड़ते नहीं, उसके पीछे लगे रहते हैं, सारा दिन उसी में श्रृंगार में लगे रहते हैं और उसमें श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते हैं कि इसमें हमारा श्रेष्ठ जीवन है। तो ये दुनिया वाले का मेकअप। तो उसमें दो प्रकार का मेकअप, यानी एक सिंपल प्रकार का मेकअप रहता है जिसमें जो अपने ब्राह्मण आत्माएं भी वो मेकअप करते हैं, जैसा पाउडर लगाना, क्रीम लगाना, लेकिन बाबा बोलते वो नहीं करना है, क्योंकि हमें शरीर का श्रृंगार नहीं करना है, तो हमें आत्मा का श्रृंगार करना है, आत्मा को दिव्य गुण से श्रृंगारना है। तो दुनिया वाले वो श्रृंगार करते हैं, तो दुनिया वाले में एक सिंपल श्रृंगार, और दूसरा जो फिल्म इंडस्ट्रीज के हीरो हीरोइन लोग रहते हैं उसका कमाल का मेकअप रहता है, क्योंकि वो इतना मेकअप करते हैं कि क्योंकि वो मेकअप बिजनेस के हिसाब से करते हैं वो लोग, क्योंकि जैसा जो जितना ज़्यादा मेकअप करेंगे, जितने फैशनेबल स्टाइल करेंगे, उतनी उनको प्रसिद्धि मिलती है और लोग भी उसके चाहने वाले बढ़ जाते हैं, इसलिए वो उतना श्रृंगार करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो श्रृंगार में नुकसान भी होता है, कभी कभी जो श्रृंगार के सामान रहते हैं उसमें कुछ केमिकल मिक्स रहता है, उसके कारण उसका साइड इफेक्ट भी होता है, लेकिन उसकी परवाह नहीं रहती उन लोगों को, क्योंकि उन्हें तो अपना प्रसिद्धि चाहिए, इसलिए वो श्रृंगार करते हैं। तो और एक बात, जैसे साल पहले की बात, ये बायोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय लोगों का मनोरंजन कैसा होता था, हाँ, जैसे नाटक या रामलीला, रामलीला के आधार से, नाटक के आधार से लोगों का मनोरंजन होता था। तो उस समय जो रामलीला या नाटक में पार्ट बजाने वाले जो एक्टर लोग थे, यानी उनके पार्ट अनुसार एक्टर को चुनना पड़ता था, वो डायरेक्टर को, तो उसको बहुत परेशानी यानी मेहनत लगती थी, कि जैसा रामलीला है समझो, उसमें हनुमान का पार्ट बजाना है किसको, तो हनुमान जैसा व्यक्ति को वैसी शरीर यष्टि वाला व्यक्ति उसको ढूंढना पड़ता था, या जैसा कीतक कीचक वध नाटक है उसमें यदि भीम का रोल किसको देना है, तो भीम जैसा रोल करने वाला व्यक्ति ढूंढना पड़ता था, वैसी बॉडीगार्ड वाली है, तो जिसकी बॉडी अच्छी स्ट्रांग है ऐसा व्यक्ति, तो फिर वो डायरेक्टर को बहुत मेहनत लगती थी। लेकिन अभी देखो साइंस वाले ने कितना आसान कर दिया है ना, क्योंकि अभी जो पतला व्यक्ति पतला दुबला है उसको भी भीम जैसा स्ट्रांग दिखा सकते हैं, या जो काला व्यक्ति है उसको भी गोरा दिखा सकते, हैंडसम दिखा सकते हैं। तो साइंस ने क्या किया, असंभव को भी संभव करके दिखाया है। तो बाबा भी बोलते कि एक साइंस की शक्ति और एक साइलेंस की शक्ति, तो साइंस ये साइंस की शक्ति वो भी शक्ति है, क्योंकि उन्होंने भी क्या शक्ति से बोझ को असंभव बात को भी संभव करके दिखाया। जैसे रेगिस्तान को भी उसने हरियाली बना दिया है, पहाड़ पर भी फूल उगा दिया, और क्या क्या साइंस की शक्ति ने, और जे वायुमंडल को भी चेंज कर दिया, जैसा ठंडा मौसम है उसको गर्म और गर्म मौसम को ठंडा कर देती, यानी जितनी उन्होंने प्रगति की है। तो बाबा कहते वो साइंस वाले इतना कुछ कर सकते, तो आप तो साइलेंस की शक्ति आपके पास है, आप क्या नहीं कर सकते, तो हम भी कुछ कर सकते। तो उसके आधार से हम अभी देखेंगे कि रूहानी मेकअप, ये आज की जो अव्यक्त वाणी है 10/86 की, उसके आधार पर हमने सिर्फ 5 बातें, उस 5 बातों के आधार से हम रूहानी मेकअप करेंगे। तो पहली बात है याद, क्या याद द्वारा कैसा श्रृंगार करना, मेकअप यानी आत्मा का श्रृंगार करना है हमें, कि याद द्वारा आत्मा का श्रृंगार करना, क्योंकि बाबा देखो ऐसी एक भी मुरली नहीं, साकार मुरली अव्यक्त मुरली का, जिसमें बाबा ने बाप को याद करो ऐसा बोला नहीं होगा, ऐसी है एक मुरली एक भी नहीं है ना, क्योंकि हर एक मुरली में बाबा ने बोला है कि बाबा को याद करो। तो इतना बाबा गला फाड़ फाड़ के क्यों बोलते हैं बच्चे को कि मुझे याद करो, मुझे बोलते तो भाई ध्यान में नहीं, बाबा बोल रहे कि मुझे याद करो, लेकिन उस पर अटेंशन नहीं देते हैं, क्योंकि बाबा को पता है कि 63 जन्मों का बोझ आत्मा के ऊपर, 63 जन्म से हम आत्मा ने बहुत कुछ पाप कर्म किए है, और उस पाप कर्म का बोझ है तो ये संगम युग पर एक ही जन्म में पूरा चुक तो करना हिसाब किताब। तो इसलिए बाबा करते हैं कहते हैं कि मुझे याद करो, जितना हम ज्यादा याद करेंगे उतना हिसाब किताब चुक तो हो जाएगा और आत्मा सत्व प्रदान बन जाएंगी। लेकिन उसके लिए भी क्या चाहिए, भूतकाल का अभ्यास चाहिए, जिन बच्चों ने भूतकाल का अभ्यास किया होगा वही बाबा को याद कर सकते, नहीं तो ऐसा नहीं, कभी अमृतोला की नहीं की, कभी बायनाबाजी कि आज बारिश है या तबीयत ठीक नहीं बीमार है, तो एक दिन नहीं किया अमृतोला तो क्या होता है, बाबा को याद नहीं किया तो इस प्रकार के ये बानेबाजी करने वाले आत्माएं है। तो वो आत्मा यानी भूतकाल का अभ्यास यानी अंतिम समय में जब उसको बाबा की याद नहीं आ सकती कि अचानक कोई समस्या आ गई, तो उस समय उनको वो समस्या भी उसको याद आएंगी बुद्धि में, बाबा याद नहीं आएगा। इसलिए बाबा ने बोला कि भूतकाल का उनको रहेगा वही अंतिम समय में बाबा को याद कर सकते। इस पर मुझे एक रामायण की बात याद आ रही है, जैसे वाल्मीकि ऋषि सभी ने नाम सुना है जिन्होंने रचना की, तो उनके बारे में एक बताती है, वो ऋषि यानी ऋषि के बोले एक डाकू था बोलते कि वो हर दिन, शास्त्र में लिखा है कि वो हर दिन रास्ते से लोगों को पकड़ता था, उससे जो भी धन है वो छीन लेता था और उसको मारता था। ऐसा हर दिन का उसका धंधा था ये वाला, और उससे उसका परिवार का पालन पोषण होता था। लेकिन एक दिन क्या होता है, अचानक नारद में आ जाती है तो उसको भी पकड़ लेता है वो, और बोलते आपके पास जो कुछ होगा वो दे दो नहीं तो मारूंगा। तो वो बोलते मैं तो ऋषि संन्यास हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तो वो बोलते मेरे मारो लेकिन पहले मेरे एक प्रश्न उत्तर दे दो, बोलते बाद में लेके तो मार सकता है आप। तो फिर क्या प्रश्न है बोलते आपका, तो वो बोलते जो आप इतने दिन लोगों को मारते हैं, जो भी धन कमाते और उससे आपके परिवार का पोषण होता है, लेकिन ये पाप कर्म आपके ऊपर इतना सारा पाप का बोझा है, तो वो लोग इसके भरे होंगे, हिस्सेदारी लेंगे क्या बोलते वो इसमें। तो बोलते क्यों नहीं लेंगे, बोलते क्योंकि मैं उनके लिए सब कुछ करता हूँ, इतना मारता हूँ, पैसे कमाता हूँ, तो जरूर मेरे पाप कर्म की इसमें भागीदारी होंगे बोलते। तो वो लोग तो जाओ देख के आपको पूछ के आ जाओ। तो वो बोलते आप भाग गए तो, बोलते मैं भागूंगा नहीं, मुझे बांध के रखो। फिर उसको एक रस्से से बांध देता है, फिर वो जाता है, और जाने के बाद घर के सभी सदस्य को पूछता है, अपने पिताजी को, माता को और पत्नी को, बच्चे को, तो सभी का यही जवाब रहता है कि आपका कर्तव्य बोलते हमारा पालन करना, इसलिए आप उस गलत कर्म क्यों करते, अच्छे कर्म करके हमका पालन कर सकते हैं आप, तो आप जो पाप कर्म किए तो उसका भागीदारी आप भी रहेंगे, बोलते आपको ही भोगना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे। एकदम उसको वैराग आ जाता है और वो तुरंत नारद मुनि के पास आ जाता है और उसको बोलता है कि मुझे इस पाप कर्म से मुक्ति दिलाओ। तो फिर वो बोलते आप ऐसा करो, राम का मंत्र जप बोलते तो उससे आपको मुक्ति हो जाएंगी। लेकिन जब वो बोलता है राम का मंत्र जपने के लिए, उसके मुख से राम का नाम ही नहीं आता, क्योंकि वो राम बोलने के लिए बोलता है और वो मरा बोलता है। क्यों बोलता है मरा, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में कभी अच्छे कर्म ही नहीं किए, कभी राम का नाम ही नहीं लिया, तो अंतिम समय आ गया, उस समय वो नाम उसको याद नहीं आ रहा था। तो वैसा बाबा ही बोलते हम बच्चे भी कभी भूतकाल का अभ्यास करेंगे बाबा की याद का, तो अंतिम समय में हमारे बुद्धि में बाबा की याद आएंगी, नहीं तो अचानक का पेपर में हम फेल हो जाएंगे और बाबा हमारे बुद्धि में नहीं रहेगा। तो इसलिए बाबा ने पहली बात बताई कि निरंतर यानी एक बाबा की याद के लिए भूतकाल का अभ्यास चाहिए, और दूसरी बात बाबा ने बोला है निरंतर याद चाहिए वो भी। इसलिए अव्यक्तवाणी में बाबा ने बोला है जैसे हम भोजन करते हैं तो स्नेह के साथ बाबा के साथ ब्रह्मा भोजन करो, या जैसे उठती है तो बाबा से स्नेह से गुड मॉर्निंग करके उठो बोलते बाबा, या घूमते फिरते तो बाबा के हाथ में हाथ लेकर घूमो फिरो, यानी बाबा के साथ रहकर घूमो। यदि बाबा के हाथ में हाथ देंगे तो बाबा बोलते कि खुशी भी होंगी और आपको बोर भी नहीं लगेगा। यदि आप अकेले चलेंगे, बाबा को याद नहीं रखें, नहीं रखेंगे बाबा को, तो फिर माया आ जाएंगी बोलते। इसलिए बाबा ने एक निरंतर याद के लिए तीन बातें बताई है कि यानी खाते पीते, सोते जागते और घूमते फिरते बाबा की याद करनी है। तो इस प्रकार निरंतर याद भी चाहिए। अभी देखो दुनिया की हालत किस प्रकार की चल रही है, दुनिया में इतनी कोरोना के कारण लोग शरीर छोड़ रहे, उसमें अपने बीके बहुत सारे लोग है, लेकिन हर एक को पता नहीं था ना अचानक ऐसा समय आएगा और शरीर छूटेगा। अभी जिन लोगों का शरीर छूटा उनके लिए तो विनाश भी हो गया ना, और ये अचानक आ गया है, तो उस समय किस स्थिति में उनने शरीर छोड़ा इसको पता नहीं ना, क्योंकि जिन्होंने निरंतर बाबा की याद में रहेंगे वो जो बच्चे, तो उनको उस समय बाबा की याद आई होंगी। तो जब बाबा की याद में शरीर छोड़ा तो उनकी गति अच्छी हुई होंगी, और उस समय उनको बाबा याद नहीं आया होगा तो उस समय उनकी क्या गति ये नहीं होगी ना। तो इसलिए बाबा बोलते कि जिस संकल्प के साथ हम शरीर छोड़ते समय, जिस संकल्प के साथ शरीर छोड़ते हैं उस समय वो उसकी सदगति होती है। तो इसलिए बाबा ने दो बातें बताई बाबा के याद में, यानी एक निरंतर याद करो और बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तो इस प्रकार हम आत्मा को श्रृंगार कर सकते। दूसरा पवित्रता की बात, दूसरी बात है पवित्रता। तो पवित्रता के बारे में बाबा ने बहुत कुछ बताया है कि पवित्रता हम ब्राह्मण आत्मा का श्रृंगार है, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। जैसे हम यानी बाबा ने पवित्रता की हम धारणा करते हैं, यानी असंभव बात संभव करके दिखा, क्योंकि दुनिया वाले लोगों को क्या है वो असंभव लगता है ना प्यूरिटी की धारणा करना, लेकिन हमने संभव करके दिखाई। तो उसका कारण क्या, किस आधार से संभव किया हमने? क्योंकि बाबा ने हमें वरदान दिया है ना, योगी हो पवित्र हो, तो वो वरदान के साथ साथ भगवान ने हमें शक्ति भी दी है कि वो शक्ति के आधार से हम प्यूरिटी की धारणा अपने अंदर कर सकते। इसलिए दुनिया वाले को असंभव लगता है और हमने संभव करके दिखाया। तो यह पवित्रता की धारणा हमारे अंदर चाहिए। तो इसलिए पवित्रता की धारणा के लिए बाबा बोलते संकल्प बोल और कर्म, हमारे तीनों कैसे चाहिए? पवित्र चाहिए। तो संकल्प में भी पवित्रता, अर्थात हमारे ये संकल्प है सभी के प्रति शुभ भावना वाले होनी चाहिए, तभी हम संकल्प में हमारे अंदर पवित्रता आ जाएंगी। जैसे बोल है, हमारे बोल में क्या अच्छे बोल निकलने चाहिए। जैसे भगवान के बोल है तो उसको महावाक्य कहते हैं, हम जो भी सुनते हैं उसका जीवन महान बन जाता है। ऐसे हमारे मुख से जो बोल निकलते हैं तो उस दूसरे को खुशी दिलाने वाले बोल निकलने चाहिए, किसी को दुख नहीं मिलने चाहिए। नहीं तो ऐसे कड़वे बोल बोले तो किसी को हार्ट फेल हो जाए। तो इस प्रकार के बोल हमारे मुख से नहीं निकलने चाहिए, तो शुभ बोल निकलने चाहिए, ये बोल की पवित्रता होगी। और तीसरी बात है कर्म, जैसे भगवान के श्रेष्ठ कर्म है वैसे हमें भी श्रेष्ठ कर्म करना है। तो इस प्रकार है संकल्प बोल कर्म में हमें प्यूरिटी धारण करनी है। और पवित्रता की एक धारणा करने के लिए हमें प्रतिज्ञा करनी है। जैसे कोई भी प्रतिज्ञा करते हम तो प्रतिज्ञा की हुई बात पर क्या अटेंशन जाता है, तो भगवान के सामने पवित्रता की प्रतिज्ञा करो कि हमें पवित्र रहना है, और उसी समय भगवान के धर्मराज का भी रूप देखो कि यदि हमारे हाथ से कोई गलती हो गई तो भगवान सजा भी दे सकते, हम सजा के पात्र भी बन सकते। तो इस प्रकार हम अटेंशन देकर प्यूरिटी की धारणा अपने अंदर धारण कर सकते हैं। और जैसे सचिन भाई जी ने यानी 21 दिन की भट्टी की ब्रह्मचर्य के ऊपर, तो वो दोबारा हमने वो रिवाइज करनी चाहिए वो क्लासेस सुन करके, क्योंकि वहाँ पर सूक्ष्म बातें बताई है। क्योंकि हमने भी वो बहुत सारे हमारे सेंटर के बहन को क्लासेस भेजी है तो उनने सुना तो उनका ऐसा रिस्पॉन्ड आ रहा था, वो बहुत हमारा उस क्लास के भटके और बहुत पुरुषार्थ हो रहा, बोलते वो प्योरिटी की धारणा बहुत यानी ये हो रही है। यानी देखो ऐसे क्लासेस सुन और उसको जो सूक्ष्म बातें उसका मनन चिंतन करके अपने जीवन में धारण करो, तो उसमें क्या प्यूरिटी हमारे जीवन में आ जाएंगी और हमारे आत्मा शक्तिशाली बन जाएंगी। तो ये हम कर सकते हैं। अभी तीसरी बात है श्रीमत कि मुरली में बाबा ने बताया है कि ये हर कार्य हम श्रीमत अनुसार करने हैं, क्योंकि जब श्रीमत अनुसार हम कार्य करते हैं तो उसमें क्या होता है बाबा की आशीर्वाद मिलती है और हम आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। तो इसलिए श्रीमत, इसलिए बाबा ने अमृत वेले से लेकर रात सोने तक के हर एक हमको श्रीमत दी है। तो श्रीमत अनुसार यदि हम कार्य करेंगे तो हमें हर कार्य में सफलता मिलेगी, और सफलता मिलने से हर कार्य हम यशस्वी हो जाएंगे। तो ये बाबा ने श्रीमत दी, जैसे बाबा ने सोने की भी श्रीमत दी है, जब सोते हैं तो बाबा के याद में सो। जैसे ये कहेंगे अव्यक्त मुरली पढ़कर पढ़ो और बाद में सो, या उसका मनन चिंतन करो, या दो व्यक्ति है तो क्या करो ज्ञान का डिस्कस करो। तो इस प्रकार हम करेंगे तो बाबा के याद रहेंगी, यानी उठते समय बाबा के याद आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने बोला है ना कि गुड मॉर्निंग यानी बोलो स्नेह से गुड मॉर्निंग बोलो तो बाबा के याद आ जाएंगी, तो हमारी अमृत वेला पावरफुल हो जाएंगी। कई लोगों की अमृत वेला पावरफुल नहीं बनती, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि वो उनकी सोने की विधि ठीक नहीं है, क्योंकि वो लेट सोते होंगे या भोजन भी भारी करते हैं, इसलिए अमृत वेला उन्हें झुटका आता है। तो इसलिए अमृत वेला पावरफुल होने के लिए जब बाबा ने श्रीमत दी उस श्रीमत में हम चलेंगे तो हम पावरफुल बनेंगे। ये हो गई तीसरी बात। और चौथी है सेवा, कि सेवा से हमारा भाग्य बन जाता है। जैसे बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा तीन प्रकार की सेवा बताई, उनमें से अभी समय अनुसार यानी कौन सी सेवा जरूरी है, यानी मनसा सेवा। आज देखोगा दुनिया में किस प्रकार से गुजर रहे दुनिया के लोग, क्योंकि इतने लोग दुखी है, अशांत है, यानी भयभीत हो गए हैं। तो हमें क्या करना है, मनसा द्वारा उन लोगों को सकार देना है, क्योंकि बाबा ने बताया कि इस समय यानी वाणी और कर्म की सेवा अपन कर नहीं सकेगी, उस समय मनसा सेवा करनी पड़ती। अभी ये समय देखो हम वाणी की भी सेवा कर नहीं सकते, क्योंकि घर के बाहर भी नहीं निकल सकते, हर एक लोग अपने घर के अंदर ही है। तो उस समय हम बैठे बैठे भी सकार दे सकते हैं, मनसा सेवा कर सकते कि इतने सारे लोगों ने शरीर छोड़ दिया, उसको भी सकार दे सकते हम कि उनकी आत्मा को शांति मिली। और जो भी लोग भयभीत है, भय के मारे कितने डर रहे लोग, तो उसको हम निर्भयता की शक्ति दे सकते, उसका सकार दे सकते। लेकिन मनसा सेवा भी वही व्यक्ति कर सकते कि जिन्होंने बहुत काल का उनका अभ्यास किया होगा, नहीं तो ऐसा ही नहीं। अभी तक जिन लोगों ने अपना समय ऐसा ही गवाया, समझो घूमने में फिरने में, ब्रह्मा भोजन खाने में, और कभी बाबा को याद भी नहीं किया, कभी मनसा सेवा भी नहीं किया, और अचानक उनको बोलो का मनसा सेवा कर, तो वो नहीं कर सकेंगे। अभी देखो इस लॉकडाउन के समय जो पुरुषार्थी बच्चे, उनको तो बहुत अच्छा चांस मिल गया है पुरुषार्थ करने के लिए, वो अपना समय कितना सफल कर रहे हैं। लेकिन कभी बाबा के ऐसे बच्चे उन्हें कभी बाबा को याद ही नहीं किया, कभी एक एक साल बाबा कमरे में नहीं बैठे, यदि वो लोगों को बोलो का मनसा सेवा करो तो वो क्या कर सकेंगे, इस समय नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, तो इसलिए बाबा ने बोला कि उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जिन आत्मा ने बहुत काल का अभ्यास किया होगा, वही आत्मा मनसा सेवा करके उन आत्मा को सुख शांति का सकार दे सकती है। तो ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और दूसरी बात बाबा ने बोले कि उसके लिए शुभ भावना शुभ कामना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर शुभ भावना शुभ कामना रहेंगी तो हम दूसरे को सकार दे सकेंगे। नहीं तो ऐसा नहीं, कभी कभी हमारा क्या होता है, जैसे हमारा सेवा साथी समझो, हर एक दुनिया का भी यानी दुनिया के कोई लोग समझ हमारे संपर्क में है, अपने बीके भी कोई संपर्क में है, कभी हमको बहुत दुख दिया है उन्होंने, या कभी हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया नहीं, और उसको यदि सखा देने की जरूरत पड़ी, तो यदि हम सखा देने के लिए जाएंगे तो हमारे सकाश पहुंचेंगे क्या उनकी तरफ, नहीं, क्योंकि हमें उस समय बदले की भावना आएंगी ना, क्योंकि उन्होंने हमको जीवन पर क्या दिया, दुख ही दिया समझो, हमको तकलीफ भी दी, तो उस समय सकाश देंगे भी हम, देर पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि बदले की भावना आएंगे आगे। तो इसलिए पहले हमें क्या करना है, पहले क्षमा भाव देना है, उसको क्षमा कर देना है कि जो भी कुछ किया उन्होंने, तो मैं क्षमा कर देता हूँ कि हमारा हिसाब किताब चुक्त हो गया, और ऐसा करके बाद में शुभ भावना से सकाश हो तो वहां तक पहुंच जाएंगी। तो इसलिए बाबा बोलते कि मनसा सेवा करने के लिए शुभ भावना शुभ कामना भी चाहिए और क्षमा भाव भी चाहिए, तो हम दूसरे को सकाश दे सकते। ये दो बातें बताई बाबा ने। और पांचवी बात है दिव्य गुणों का श्रृंगार करना। जैसे दुनिया के लोग समझो मेकअप के बाद लास्ट में क्या करते हैं, कपड़े को यानी सेंट वगैरह लगाते हैं, तो जिससे क्या होता है चारों तरफ सुगंध फैल जाती है। जब भी कई महफिल में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं वो लोग, तो सभी की नज़र उनकी तरफ फैल दी जाती है, ध्यान जाता है ना। तो वैसा बाबा ही बोलते हैं कि आपको कौन सा सेंट लगाना है, दिव्य गुणों का। तो हमें भी अपने जीवन में दिव्य गुणों की धारणा करेंगे तो हमारे संबंध संपर्क में जो भी व्यक्ति आएंगे तो उनको क्या खुशी मिलेंगी, संतुष्टता मिलेंगी कि हमारे दिव्य गुणों से। तो इसलिए हमें जो भी 36 प्रकार के गुण हैं उसमें से गुण हमें एक एक करके धारण करना है। इसलिए हमारे देवता की कौन सी महिमा है, सर्वगुण संपन्न, यानी सर्वगुण हमें संपन्न बनना है, तब हम दिव्य गुण धारे देवता बन सकते। तो इस प्रकार अपने आत्मा का यानी श्रृंगारना है, उसको मेकअप करना है, तो ये पांच बातें है। तो ये पांच बातें पहली कौन सी बताई, याद से हमें श्रृंगार करना है, दूसरा पवित्रता से, तीसरा श्रीमत, चौथी बात सेवा, और पांचवी बात दिव्य गुणों की धारणा करनी। तो ये पांच ही गुण यदि हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारे आत्मा का श्रृंगार हो जाएगा और आने वाले समय में हम संपूर्णता के नजदीक पहुंच सकते हैं। तो अभी हम ड्रिल करेंगे, तो अभ्यास अभ्यास करो, बहुत काल का अभ्यास करते रहो श्रृंगार का। लोग बिगाड़ देते हैं। अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित कीजिए और फरिश्ता स्वरूप में स्थित होके चलो चलते हैं सूक्ष्म वतन की ओर। सूक्ष्म वतन में बाप दादा बाह्य फैलाकर खड़े हैं। हमें देखकर बाप दादा बोले, आओ बच्चे, आप जिम्मेवार बच्चे हैं, आपका सूक्ष्म वतन में स्वागत है। और बाप दादा बोले, देखो इस समय दुनिया में कैसी हलचल मची है। दुनिया में हर एक मनुष्य दुखी है, अशांत है, भयभीत है। वो भय के कारण वो आत्माएं, आप जिम्मेवार वो कल्याणकारी आत्माओं के जड़ मूर्ति के आगे मंदिरों में पूजा अर्चना कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि हमारे इष्ट देव सुखदाता हमारे दुख दूर करो, हे शांति दाता हमारी अशांति दूर करो। ये निर्भयता के देवता हमारा भय दूर करो। इस प्रकार की पुकार कर रही है, चिल्ला रही है। तो बाप दादा बोले कि आप बच्चों को उनकी चिल्लाने की या पुकारने की आवाज सुनाई नहीं देती, तो वो आवाज सुनो। और बाप दादा हम बच्चे को ऊंचे स्थान पर ले गए। और बाप दादा बोले कि बच्चे इन आत्माओं को सकास दो, हमें इमर्ज करना है कि हम बहुत ऊंचे स्थान पर हैं। और बाप दादा से शक्ति लेकर के हम उन आत्मा को दे रहे हैं। जो आत्माएं बहुत दुखी है उनको सुख के किरणें दे रहे हैं और वो सुख का अनुभव कर रही है। जो आत्माएं अशांत है उनको शांति के किरणें दे रही है और वो शांति का अनुभव कर रही है। जो आत्माएं भयभीत है उन्हें निर्भयता की हिम्मत की किरणें दे रही है, जिनके कारण उनका भय समाप्त हो गया है। और वो आत्माएं सुख शांति और निर्भयता का अनुभव कर रही है। और ऐसा अनुभव कर रहे कि ऊपर से ऐसी कोई विशेष शक्ति हमको सुख शांति निर्भयता की शक्ति भर रही है। तो तृप्त भरे नजरों से ऊपर देख रही है। फिर बाप दादा ने हमारे सामने हॉस्पिटल का सीन इमर्ज किया। तो हॉस्पिटल का सीन देखिए कि उसमें कैसे पेशेंट है। हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है और सब आत्माओं को ऑक्सीजन लगी हुई है। वो भयभीत है, उनको भविष्य की चिंता है कि हमारा क्या होगा। और बाहर उनके रिश्तेदार खड़े हैं। और वो भी बहुत चिंतित है, चिंता भरे नजरों से देख रही है कि हमारे रिश्तेदारों का क्या होगा। ये सीन अपने सामने इमर्ज करो। और फिर बाप दादा से, प्राणेश्वर बाप दादा से प्राण की शक्ति लेकर उन आत्माओं को देनी है। हम बाबा से लेकर उन आत्माओं को दे रहे हैं। और उन आत्माओं को ऑक्सीजन मिल रहा है और वो तृप्त भरे नजरों से देख रहे, उसको अनुभव हो रहा है कि कोई फरिश्ते हमको ऑक्सीजन की शक्ति दे रहे और वो तृप्त हो रहे, और बाहर उनके रिश्तेदार भी खुशी भरे नजरों से देख रहे हैं। अभी आ जाए अपने साकार तन में और विराजित हो जाए भ्रुकुट सिंहासन पर। ओम शांति।